89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? और मैं तो बहुत ही बेहतर हूँ, और जब मेरी मुलाकात अपने लिसनर से हो जाती है तो मैं और भी बेहतर हो जाती हूँ। और बता दूँ, स्टूडियो में आ चुकी है आपकी अपनी आरजे जिमी। और दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है ज्ञानस्थली लाइव, जिसमें अभी हमने सुना कर हर मैदान फतेह, बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग था। और मैदान तो फतेह करते ही रहेंगे, जैसा कि ये सॉन्ग मोटिवेशनल था। तो बता दूं कि हम आज जो बात करने वाले हैं वो भी बहुत अच्छी जानकारी है। और जैसे कि ज्ञानस्थली लाइव में हम डेली किसी न किसी से आपको मुलाकात कराते हैं, आपको रूबरू कराते हैं, और बहुत ढेरों सारी हमें जानकारियां मिलती हैं। तो आज जो हमारे बीच हैं, नारी ज्ञानस्थली पीजी कॉलेज से डॉक्टर आशु त्रिपाठी मैम, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो हम मैम आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं अपने स्टूडियो में। कैसी हैं आप?
थैंक यू जिमी स्टूडियो में बुलाने के लिए। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हाल ही में मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय ने एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव किया है। यह बदलाव इसरो प्रमुख डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में किया गया है। आज हम आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित कुछ जानकारी प्रदान करेंगे।
जी, तो दोस्तों, अभी मैम ने बताया कि आज जो हम बात करने वाले हैं वो शिक्षा नीति के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और आज हमको बहुत ढेरों सारी जानकारियां मिलने वाली हैं। तो आप कहीं भी हैं, रेडियो ओपन करके बैठ जाइए, क्योंकि आशु मैम आज हम सभी के लिए बहुत ढेरों सारी जानकारियाँ लेके आई हैं। तो जैसे कि मैम अभी आपने कहा कि आज जो हम बात करने वाले हैं वो शिक्षा नीति पर बात करने वाले हैं, तो प्लीज़ हमारे लिसनर को बताइए कि पहले तो शिक्षा नीति किसे कहते हैं?
शिक्षा नीति किसे कहते हैं, यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। देखिए, एजुकेशन पॉलिसी को हिंदी में शिक्षा नीति कहते हैं। यह नीति बच्चों को उचित शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए बनाई जाती है। शिक्षा नीति केंद्र सरकार द्वारा बनाया जाता है। शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा व्यवस्था का पैटर्न तैयार किया जाता है, और उस शिक्षा व्यवस्था के पैटर्न को पूरे देश में लागू किया जाता है, इसलिए इसे शिक्षा नीति कहा जाता है।
जी, ये तो बहुत ही खूब कहा आपने मैम, और बहुत ही खूबसूरती से आपने इसका जवाब दिया। तो जैसे कि आपने अभी बताया कि शिक्षा नीति कहते किसे हैं, अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि नई शिक्षा नीति 2020 क्या है?
देखिए दोस्तों, जैसे अभी हम लोग सुनने में बहुत ही इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है नई शिक्षा नीति 2020, काफ़ी ढेर सारे परिवर्तन इसमें आए हुए हैं। तो नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है, जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। सन 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में ये पहला नया परिवर्तन है। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति के रिपोर्ट पर आधारित है।
जी, तो लिसनर, अभी हमारी मैम ने, यानी हमारी आशु त्रिपाठी मैम ने अभी हमें ये बताया कि जो नई शिक्षा नीति है वो 29 जुलाई 2020 को लागू हुई थी। अब हम मैम से अगला सवाल ये करना चाहेंगे कि नई शिक्षा नीति तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन है?
देखिए, हर समिति जब बनती है तो उसके कोई ना कोई एक अध्यक्ष होते हैं, मतलब जो मेन होता है उसको हम अध्यक्ष का एक नाम देते हैं। तो नई शिक्षा नीति जो ये बनी 2020, तो इस नीति के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया है। और इसके पहले शिक्षा मंत्री जो हैं वो रमेश पोखरियाल हैं। इस शिक्षा नीति के अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन हैं, जो एक प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं।
जी थैंक यू सो मच मैम, हमारे सभी सवालों का आपने बहुत ही खूबसूरती से जवाब दिया और लगातार आप खूबसूरती से जवाब दे रही हैं, तो मुझे उम्मीद है कि मेरे लिसनर को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा ये सेशन। आगे आइए बढ़ाते हैं और मेरा अगला सवाल मैम से ये है कि नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 क्या है?
जी मैम, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा है। ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है नई शिक्षा नीति में और सबके मतलब एक कहा जाए तो सबकी ये लालसा रहती है जानने की कि ये 5+3+3+4 आखिर है क्या, ये ऐसा कौन सा ढांचा है। तो जैसा कि मैं बताऊंगी आपको कि नई शिक्षा नीति में अभी तक जो पैटर्न चलता रहा है 10+2, जैसा कि सभी को रटा हुआ भी है कि 10+2 क्या है, लेकिन इसमें जो है 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। अब इसे 10+2 से बांटकर 5+3+3+4 फॉर्मेट में ढाला गया है। इसका मतलब ये है कि अब स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी और स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। फिर अगले 3 साल को कक्षा 3 से 5 की तैयारी के चरण में विभाजित किया जाएगा। इसके बाद में 3 साल मध्य चरण यानी कक्षा 6 से 8 और माध्यमिक अवस्था के 4 वर्ष कक्षा 9 से 12 हैं। तो ये है 5+3+3+4, मतलब इसको इसमें बांटा गया है। इसके अलावा विद्यालयों में कला वाणिज्य विज्ञान स्ट्रीम का कोई कठोर पालन नहीं होगा। छात्र अब जो भी पाठ्यक्रम चाहें वो ले सकते हैं। पाठ्यक्रम लचीलेपन पर आधारित है जिससे शिक्षार्थियों को अपने सीखने की गति और पाठ्यक्रम को चुनने का अवसर हो। इस तरह जीवन में हर विद्यार्थी अपनी प्रतिभा और रुचि के अनुसार वे अपने रास्ते चुन सकेंगे। कला और विज्ञान पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियां व्यवसायिक और शैक्षणिक धाराओं आदि के बीच में कोई भेद लागू नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अब बच्चे के ऊपर कोई ऐसा बंधन नहीं है, वो जैसा चाहे वैसा पाठ्यक्रम ले सकता है। इसके कुछ नियम और भी बनाए गए हैं तो इसमें बच्चा पूरी तरह से फ्री है, वो अपनी रुचि के अकॉर्डिंग अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग अपनी उसकी किस में ज़्यादा रुचि है उस हिसाब से वो अपना सब्जेक्ट का चुनाव कर सकता है और अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है, अपने करियर का चुनाव वो कर सकता है।
जी तो ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई आपने मैम कि जो नई शिक्षा नीति जो ये 5+3+3+4 है इसमें जो विद्यार्थी हैं हमारे वो अपने मनपसंद सब्जेक्ट चुन सकते हैं और उससे अपना करियर बना सकते हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब अगला सवाल हम आपसे मैम ये करना चाहते हैं कि भारत में अब तक कितनी शिक्षा नीति लागू हुई है?
भारत में जैसे क्रिया शिक्षा नीति जो मुख्य रूप से लागू हुई वो 3 शिक्षा नीतियाँ लागू हुई हैं। बीच में क्रियान्वयन कार्यक्रम कहा जाए या सुधार कार्यक्रम कहा जाए वो कई हुए बीच बीच में, लेकिन जो मुख्य शिक्षा नीति है वो अभी तक भारत के शिक्षा मंत्रालय द्वारा केवल 3 मुख्य शिक्षा नीतियों का शुभारम्भ किया गया है। पहली शिक्षा नीति 1968 में जो कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय में बनी थी, और दूसरी शिक्षा नीति 1986 में जो कि श्री राजीव गांधी के समय में बनी, और तीसरी शिक्षा नीति 2020 में जो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के कार्यकाल में बनी। और ये शिक्षा नीति 2020 जो है करीब 34 सालों के बाद एकदम से उलटफेर इसमें किया गया है और पूर्ण तरह से परिवर्तन इसमें किया गया है। इसमें ऐसे कई बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी लोगों को समझने के लिए अभी भी मतलब कई कहा जाए कई विद्यालय महाविद्यालय अभी भी इसमें मतलब एक तरह से खोज ही शुरू है इसमें कि इसमें क्या क्या और चीज़ें हैं या और भी क्या हो सकती हैं। अभी भी हमारे जितने शिक्षा शास्त्री हैं मनोवैज्ञानिक हैं सब इसमें लगे हुए हैं और इसमें और सुधार किया जाए क्या किया जाए या कैसे कैसे बदलाव हो सकते हैं ये तो समय आने पर ही पता चल सकता है।
जी तो लिसनर अभी हमारे मैम ने हमें ये बताया है कि जो नई शिक्षा नीति है वो 35 साल बाद लागू हुई है और बहुत ही इसमें चीज़ें हैं जो अभी हमको नहीं समझ आ रही हैं और इसे समझने के लिए आपको बहुत सारा वक्त भी देना पड़ेगा और इसको सुधारा भी जा रहा है और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको किया जा रहा है। तो अब अगला सवाल मैम से मेरा ये है कि नई शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हम पुरानी शिक्षा नीति पे एजुकेशन चलाना क्या मुश्किल हो रहा था, या क्यों हमने ये ऐसा सोचा गया कि नई शिक्षा नीति अब लागू होनी चाहिए या एजुकेशन पैटर्न को थोड़ा चेंज किया जाए।
थैंक यू जिमी, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। मतलब हम कोई भी कार्य करते हैं या कोई भी योजना बनाते हैं तो उसमें देखते हैं कि कहाँ तक इसमें जिस लक्ष्य से हमने ये योजना बनाई थी तो क्या वो लक्ष्य हमको हासिल हो रहा है, या इसमें अभी भी कोई कमी आ रही है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बाधक बन रही हैं। तो जब शिक्षा नीति बनाई जाती है उसके देखा जाता है उसका प्रोग्रेस क्या है, कैसे क्या है, और उसमें ये महसूस किया जाता है, शिक्षा शास्त्रियों को ये महसूस होता है या हमारे जो देश के कर्णधार हैं उनको ये महसूस होता है कि कहीं ना कहीं इसमें एक परिवर्तन की आवश्यकता है, तो उसमें एक नीति बनाने की ज़रूरत पड़ती है। बिना नीति के या कहा जाए बिना योजना के हम कोई कार्य अच्छे से नहीं कर सकते हैं। तो भारत सरकार द्वारा ये जो नई शिक्षा नीति 2020 बनाई गई 34 सालों बाद इसमें परिवर्तन किया गया, तो इसमें ये देखा गया कि 2030 तक नीतिगत जो पहलू हैं, जो भी चीज़ें उसमें रखी गई हैं, उनको प्राप्त करने के उद्देश्य से नई शिक्षा नीति तैयार की गई। ये है शिक्षा नीति में, मतलब जो पहले समय से शिक्षा नीति चली आ रही थी उसमें पूर्ण रूप से एक परिवर्तन है। और शिक्षा नीति 1986 जो बनी थी उसके बाद ये शिक्षा नीति लागू की गई है। यह नई शिक्षा नीति कहा जाए तो 2020 जो है ये विद्यार्थी की आत्म क्षमताओं और उनकी अवधारणा पर आधारित है। सीखने की प्रक्रिया है, ना कि रटने की प्रक्रिया पे जोर दिया गया है जैसे पहले था कभी कि रटने की प्रक्रिया पे ज़्यादा जोर दिया जाता था। लेकिन आज इस चीज़ को महसूस किया गया शिक्षा शास्त्रियों ने या हमारे देश के जो कर्णधार हैं उनको ये महसूस हुआ कि रटने वाली प्रक्रिया को कहीं ना कहीं बंद करना है और बच्चों को एक ऐसी स्किल डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है कि जैसे बच्चे कुछ ऐसा भी कर सकें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो आज की शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा को ज़्यादा जोर दिया गया है और जैसा कि हमारे जो सिलेबस जो बन के आ भी रहे हैं उसमें इस चीज़ का ध्यान रखा गया कि हर फर्स्ट सेमेस्टर से ही उनमें ओकेशनल कोर्स को अनिवार्य कर दिया गया है। और इसका ये उद्देश्य है कि अगर बच्चा कोई ओकेशनल स्किल्स उसके अंदर है, अगर उसके अंदर है कोई, तो वो आगे चल के अपनी लाइफ में अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है और उसको जो है रोज़गार के अवसर आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं।
जी थैंक यू सो मच मैम, बड़े ही खूबसूरती से आपने इसका सवाल का मेरे उत्तर दिया। जैसा कि मेरा सवाल था कि नई शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो लिसनर मैम ने हमें बताया कि नई शिक्षा नीति की हमें आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जब भी कोई शिक्षा नीति लागू की जाती है या कोई भी चीज़ जब भी होता है तो उसका एक एम, एक लक्ष्य होता है कि हम इसलिए ये करना चाहते हैं या इस चीज़ को बेहतर करने के लिए करना चाहते हैं। तो शायद पुरानी शिक्षा नीति में जो लक्ष्य बना था वो पूरी तरीके से पूर्ण नहीं हो रहा था और बच्चे एजुकेशन तो ले रहे थे बट कहीं ना कहीं वो अपने जो उनको सब्जेक्ट बहुत पसंद था उसका चुनाव नहीं कर पा रहे थे या व्यवसाय में भी थोड़ी दिक्कत आ रही थी। नई शिक्षा नीति जो है वो पूरी इस चीज़ पर आधारित है कि बच्चे अब अपने फेवरेट सब्जेक्ट से अपनी एजुकेशन ले सकेंगे और बहुत सारे ओकेजन उनके सामने अब खुले हुए हैं, व्यवसाय के काफ़ी सारे रास्ते अब उनके पास हैं इस नई शिक्षा नीति के ज़रिए। तो अब अगला सवाल हम मैम से ये करते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अहम बिंदु कौन कौन से हैं।
थैंक यू जिमी, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनाई गई हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में ये नीति बनी और इसमें बहुत से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, लेकिन कहा जाए समय की कमी के चलते या इतनी बड़ी शिक्षा नीति को हम एक बार में नहीं बता सकते हैं, तो इसके जो प्रमुख बिंदु हैं या महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं वो हैं जैसे कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो नाम है वो बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अभी तक हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से उसको कहते थे, लेकिन अब उसको हम शिक्षा मंत्रालय के नाम से जानेंगे। फिर है स्कूलों के लिए 10+2 की जगह 5+3+3+4 का फार्मूला लागू कर दिया गया है। ग्रेजुएशन में 3 या 4 साल की डिग्री व एमफिल की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। छठी कक्षा से ही छात्रों को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया है। और जो और भी प्रमुख बिंदु हैं वो है कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को आसान बनाया गया है। जैसे बच्चों के मन में बोर्ड परीक्षा को लेके डर रहता था, भय रहता था, तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं एक भय भगाने की कोशिश की गई है नई शिक्षा नीति में। 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में ही पढ़ाई करने की उनको अनिवार्य किया गया है। जैसे अगर हम अपनी क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा से कुछ सीखते हैं तो बहुत ही आसानी से सीख जाते हैं, और अगर उसको हम किसी दूसरी लैंग्वेज में सीखते हैं या दूसरे उसमें सीख रहे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों को सीखने में कठिनाई होती थी। और आगे किया गया कि UGC, NCTE और AICTE की जगह एक नियामक बॉडी तैयार की गई। मतलब जैसे जो अलग अलग संस्थाएं थी, कहीं ना कहीं इनको ये किया गया कि एक साथ मिलके ये कार्य करें। उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होने पर जोर दिया गया है। ऑनलाइन एजुकेशन पे जोर दिया गया है, जैसे कि हमने इतने मुश्किल घड़ी में कोरोना काल में भी देखा कि ऑनलाइन एजुकेशन ही बच्चों को कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़े हुए थी। अगर ऑनलाइन एजुकेशन की सुविधा ना होती तो हमारे बच्चे, ऐसे काफ़ी बच्चे मतलब जो शिक्षा से काफ़ी दूर हो जाते और कहीं ना कहीं उनकी जो आगे बढ़ने की जो एक गति थी वो बाधित होती। तो नई शिक्षा नीति में ऑनलाइन शिक्षा पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। और एक सबसे जो महत्वपूर्ण और इसमें पॉइंट्स है वो है कि विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। मतलब अभी तक हमारे यहाँ के जो भारत के स्टूडेंट होते थे, कहीं ना कहीं होता है विदेशों में जाके उस शिक्षा को ग्रहण करते थे, लेकिन अब ये सुविधा प्रदान की गई है कि विदेशी विश्वविद्यालय जो भी हैं वो भारत में अपना कैंपस खोल के और हमारे भारतीय विद्यार्थियों को एजुकेशन प्राप्त करने की सुविधा उनको प्राप्त हो गई है।
जी थैंक यू सो मच मैम, आपने बड़ी ही खूबसूरती से और बहुत ही अच्छे से हमारे लिसनर को जो अहम बिंदु हैं नई शिक्षा नीति के उसके बारे में आपने बताया। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो विषय रहा होगा, आज का जो टॉपिक था जो आपके लिए लेके आई थी डॉक्टर आशु त्रिपाठी मैम, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज में एजुकेशन डिपार्टमेंट से, बहुत ही अच्छी जानकारी आज उन्होंने नई शिक्षा नीति के बारे में दी। और मुझे उम्मीद है कि मेरे लिसनर को बहुत ही अधेर सारी जानकारियाँ आज आशु मैम से मिली होंगी। थैंक यू सो मच मैम इतना कीमती वक्त हमें देने के लिए और हमारे लिसनर के लिए ढेरों सारी जानकारियाँ आप लेके आई, उसके लिए थैंक यू सो मच। और हम इसी वादे के साथ मैम से अलविदा लेते हैं कि फिर मैम से मुलाकात कराएंगे, बहुत ही ढेरों सारी जानकारियाँ होंगी जब भी मैम आएंगी आपके लिए वापस, तो बहुत सारी और भी नई और अच्छी जानकारियाँ लेकर वापस आएंगी। तो थैंक यू सो मच मैम कि आप यहाँ पे आई और आपने हमें अपना इतना कीमती वक्त दिया।
थैंक यू जिमी यहाँ बुलाने के लिए। और जैसा कि हम आपसे कहेंगे कि नई शिक्षा नीति को इतनी जल्दी हम नहीं समझा सकते हैं, तो इसके लिए अभी हम कई बार आएंगे, या हमारे डिपार्टमेंट के और भी जो लोग हैं प्रोफेसर मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवक्ता जो भी हैं वो लोग भी आएंगे और इस शिक्षा नीति को अभी डिटेल में मतलब बताने की आवश्यकता है। अभी इसको काफ़ी एक क्रमबद्ध तरीके से अभी एक शुरुआत की गई है, अभी ऐसे कई सारी चीज़ें इसमें हैं जो बताने की ज़रूरत है और उसको एक डीपली समझने की हमें आवश्यकता है। तो धीरे धीरे आके ऐसे क्रमबद्ध रूप से आपको हम नई शिक्षा नीति के बारे में जानकारी देते रहेंगे। थैंक यू जिमी यहाँ बुलाने के लिए।
जी तो जैसा कि लिसनर अभी आपकी मैम या हमारी मैम ने हमें हमसे ये बताया कि जो नई शिक्षा नीति है उसके बारे में इतने छोटे में हम नहीं समझा सकते हैं, इसके लिए हमें आपका बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए। तो लिसनर मुझे उम्मीद है कि जब भी हम दोबारा आपसे मैम की मुलाकात कराएंगे तो हम नई शिक्षा नीति के बारे में बहुत ढेर सारी बातें करेंगे और बहुत अच्छी अच्छी और भी बहुत सारी जानकारियाँ होंगी। फिलहाल आज जो भी जानकारियाँ थी मुझे उम्मीद है कि वो सभी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और उपयोगी रही होंगी। तो थैंक यू सो मच मच लिसनर, आपने अपना वक्त दिया हमें और आपकी मैम को, एंड थैंक यू सो मच मैम कि आप यहाँ पे आई।
थैंक यू।
तो दोस्तों बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ थी, अब आइए सुन लेते हैं एक खूबसूरत सा सॉन्ग और मिलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। और बता दूं कि वापस आकर हम लेकर आएंगे आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सी एक स्टोरी, तो कहीं